बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि शी जिनपिंग और जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो पिछले दो दशकों से अधिक जो एक प्रथा चली आ रही थी, जो राष्ट्रपति हैं या अन्य जो अधिकारी हैं पार्टी में और सरकार में, उनका जो कार्यकाल है उसके ऊपर एक प्रतिबंध था, उस प्रथा को अब शी जिनपिंग इस नेशनल पीपल्स कांग्रेस में उन्होंने उस प्रथा को लटखेर कर दिया है। तो इस तरह से जो चीन में जो राजनीतिक प्रणाली है और जो कम्युनिस्ट पार्टी है, दोनों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हो जाता है।
ये बताइए अलका जी, लेकिन इस कदम के पीछे क्या कारण हो सकता है, ये जो कंसोलिडेशन ऑफ पावर है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग समीक्षा कर रहे हैं, क्या ये एक तरफ क्या शी जिनपिंग क्या इनसिक्योर है?
इसको इनसिक्योरिटी के तौर पर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस समय अगर आप देखें पिछले 5 वर्षों से शी जिनपिंग ने जिस तरह से अपनी जो सत्ता है उसको कंसोलिडेट किया है और अपनी जो एक इतिहास में उन्होंने अपना जो एक स्थान बना लिया है, उसके नजरिए से देखें तो शी जिनपिंग अब माओ और डेंग शियाओपिंग की कतार में तीसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाते हैं चीन के राजनीतिक इतिहास में, मतलब पीआरसी के राजनीतिक इतिहास में। तो ये इनसिक्योरिटी तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन ये है कि अब उनका जो एक थॉट है वो अब संविधान में भी आ जाएगा, पार्टी के संविधान में तो वो आ ही चुका था और अब जो राष्ट्रीय संविधान है उसमें भी उसको एक स्थान दिया जा रहा है। तो इस तरह से शी जिनपिंग एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही शक्तिशाली, प्रभावशाली नेता बन जाते हैं और उनका जो एक स्थान है वो ये कहा जाता है कि माओ ज़ेडुंग ने चीन को आजादी दिलाई, डेंग शियाओपिंग ने चीन को अमीर बनाया और अब शी जिनपिंग चीन को विश्व में सबसे बड़ी भारी शक्ति के रूप में उभारने वाले हैं। तो इस तरह से वो उनका स्थान बन रहा है, तो ये इनसिक्योरिटी नहीं है। जिस तरह से वो कार्यकाल अपना बढ़ा रहे हैं और अपने आप को एक इसके आगे भी शायद हो सकता है वो और चलते चलें, उससे बस दो बातें साफ हो रही हैं कि वो चाहते हैं कि जो वो कार्य उन्होंने अब अपने सामने और देश के सामने रखे हैं उनमें कोई भी बाधा ना आए और किसी भी तरह से रुके नहीं, और दूसरा कि उनके पास इतनी कैपेसिटी रहेगी कि वो पार्टी को पूरी तरह से मजबूत नेतृत्व प्रदान करें।
जी ये बताइए, लेकिन अगर चीन की आंतरिक राजनीति की बात करें, क्योंकि ये तो एक तरह से डिक्टेटरशिप की ओर चीन नजर आ रहा है बढ़ते हुए, लेकिन क्या वहां पर चीन में कोई भी ऐसा नेता है जो उन्हें चुनौती दे सकता है, या ये फिर समझा जाए कि ये अब डिक्टेटरशिप होने वाली है एक तरह से?
इस समय फिलहाल तो ऐसा कोई संभावना नहीं है कि कोई चुनौती देने के लिए उठ खड़ा होगा, लेकिन हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम डिक्टेटरशिप जैसा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि चीन की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के आदेश से पूर्णतया नहीं चलती है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस संगठन में बहुत से लेयर्स हैं, सेंट्रल लेवल से लेके ग्रास रूट तक ये पार्टी में हर स्तर पे एक जो ग्रुप रहता है जिसके द्वारा नीतियां जो हैं डिस्कस की जाती हैं, निर्धारित की जाती हैं, नीचे के क्या ओपिनियंस हैं वो ऊपर किस तरह जाते हैं, एक कॉलेजियल जो ग्रुप है हर स्तर पे जो इन बातों के ऊपर चर्चा करता है, विमर्श करता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम इवॉल्व हो चुका है। और इसमें ये सोचना कि सिर्फ एक ही व्यक्ति इतने बड़े भारी देश में जिसमें 1 बिलियन से ज्यादा लोग हैं उसको वो कस के अपनी मुट्ठी में रखेगा, ये तो इसकी संभावना बहुत ही कम है। शी जिनपिंग निर्भर रहेंगे एक ग्रुप पर जो उनकी तरह सोचता है, कंसेंसस बिल्डिंग को वो करेंगे कोशिश उसको बरकरार रखें। तो मुझे लगता है कि थोड़े बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस विद इन द सिस्टम हैं, हम लोग जो शी जिनपिंग को एक तरह से अलग करके और उनके ऊपर एक व्यक्तिगत एक फोकस करके ये सोचें कि ये हम इस तरह से सारी व्यवस्था समझ जाएंगे तो ये मुमकिन नहीं है। एक जो पॉलिट ब्यूरो है उसके अंदर भी फैक्शंस हैं। अब देखिए कि शी जिनपिंग थॉट के साथ साथ एक चीज और की गई है, वो है हुचिन थाओ की जो उनके जो पहले थे उनकी जो थॉट थी अब वो भी संविधान में आ रही है। यानी कि फैक्शंस पार्टी के अंदर हैं, इन फैक्शंस को बैलेंस करना, इनके सबको अपना अपना वो जो एक तरह से उनका मत है उसको भी बीच में लाना, शी जिनपिंग को बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हालांकि ये एक वन मैन जो डोमिनेंट पार्टी है वो अवश्य है, लेकिन इसमें भी बहुत से प्लेयर्स हैं और बहुत से इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस बने हुए हैं, तो उनका रोल भी रहेगा। लेकिन हाँ ये है कि ये एक अथॉरिटेरियन सिस्टम है और शी जिनपिंग एक अथॉरिटेरियन लीडर है। डिक्टेटर कहना मुझे लगता है कि हम फिर उसको बहुत ही एक ब्रॉड स्वीप में उसकी जो न्यूएंसेस हैं उसको हम समझ नहीं पाएंगे।
जी ये बताइए कि ये कदम, क्योंकि आप चाइना एक्सपर्ट हैं, आप इतने सालों से इस पर काम कर रही हैं, कि चीन के लिए ये कदम अच्छा है या बुरा है?
देखिए कहीं भी एक व्यक्ति को इस तरह से पावर मिल जाए जो कि उसके टेन्योर पे कोई भी चेक ना हो, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई व्यवस्था अच्छी हो सकती है अपने आप में। डेंग शियाओपिंग ने जो रिफॉर्म्स किए थे जिसमें ये था कि आप दो टर्म्स तक करिए, उसमें ये रहता है कि एक तरह से एक प्रिडिक्टेबिलिटी रहती है सिस्टम में और एक नियम और कायदे कानूनों के अनुसार जो पूरी पद्धति और प्रणाली चलती है उसमें एक स्टेबिलिटी भी आती है। तो अपने आप में एक व्यक्ति को इनडेफिनेटली शहंशाह बना देना तो कहीं भी अच्छी बात नहीं होती है।
जी
ये जरूर है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो हमेशा से ही उनका एक ट्रेडिशन रहा है स्ट्रॉन्ग लीडर्स को सबसे ऊपर रखना और उनके अंदर काम करना, तो दोनों बातें हम देख रहे हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है इसके खिलाफ ऑपोजिशन भी होगा, शी जिनपिंग को इतना आसान नहीं होगा कि वो अपनी तानाशाही चलाएं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे आप देखिए तो लोगों में भी काफी इसके खिलाफ आवाज उठाई है, हालांकि उनको भी चुप करा दिया गया है।
जी
क्रिटिसिज्म भी है और विद इन द पार्टी भी ऐसी बात बहस अभी खत्म नहीं हुई है, इसके ऊपर बहस जरूर चलेगी और चलती रहेगी। लेकिन फिलहाल जो हम देख रहे हैं कि एक ये एक व्यक्ति को अनिश्चित कार्यकाल दिया है।